ओम शांति, ओम शांति। मीठा बाबा, मीठे बच्चे और बाबा मीठे मीठे ज्ञान रत्नों से हम बच्चों को भरपूर करते हैं। आज भी प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बाप ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए जिसका हाथ भगवान के हाथ में हो, तो उसे तो कुछ भी सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। और बहुत ही आराम से बाबा की गोदी में बैठते हैं, तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं सब मीठे बच्चे। और दूसरी बात बाबा ने कही कि दुनिया में देखो अनेक बीमारियां हैं और अनेक बीमारियों के लिए अलग अलग सर्जन होते हैं। यहाँ सब बीमारियों के लिए केवल एक ही सर्जन है और एक ही दवा है और सब कुछ उसी दवा से सब ठीक हो जाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अपना टाइम झरमुई की बातों में वेस्ट नहीं करो। कौन क्या करता है बाबा ने कहा वो बच्चों को ध्यान रखना है, इसमें वेस्ट नहीं करना है। फिर चौथी बात बाबा ने कही कि देखो ये ज्ञान और योग इतना साधारण है कि बच्चे कहीं भी बैठ करके बाबा को याद कर सकते हैं और कहाँ कहाँ बैठ के कर सकते हैं वो भी बाबा ने बताया है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 27 जून 2025। मुरली का मुख्य हैडी, मीठे बच्चे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मीठे बच्चे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज का प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? इसका उत्तर है, बच्ची तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई भी आश्री स्वभाव नहीं होना चाहिए। पहली पॉइंट कि जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई भी आश्री स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई पर क्रोध नहीं करना है। तीसरा, किसको भी दुख नहीं देना है। चौथा है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल सी नो इविल। फिर बाबा क्या बताते हैं, टॉक नो इविल थिंक नो इविल, बाबा बताते हैं। अच्छा, ओम शांति, तुम बच्चों का बैठना बहुत ही सिंपल है ना, सिंपल। कितना कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बैठता है। स्कूल में तो बैठेंगे तो मास्टर बड़ा टाइट रहता है कि आपको ऐसे रहना है, अलर्ट बैठना। यहाँ तो बहुत मस्ती में बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों का बैठना बड़ा सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, चाहे पहाड़ी पर बैठो, चाहे घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। अब बाबा जो बताते हैं किस लिए कि कहाँ भी बैठ करके बाबा को याद करना, ऐसा नहीं जंगल में चले गए, जंगल में चेरी है चलो तोड़ लो, ये लगा कौन सी चीज लगी है कौन सी नहीं लगी उसको देखते रहो और बाबा भूल जाए। गर्मियों के दिन होते हैं ना, बच्चे जाते हैं जंगल में, वहां जाते चेरी तोड़ने के लिए चले जाते, हमको याद आता है बाबा के टाइम पर और दादियों के टाइम पर गर्मी के महीने में शाम को सब वॉक करने जाते थे, जंगल में जाते थे, इधर से चेरी तोड़ी उधर से तोड़ी इधर से आम तोड़ा, उसमें हर एक देखता कौन सी चीज कहाँ है, अरे बाबा भूला चेरी को ढूंढते रहते थे। इसलिए बाबा कहते जंगल में जाना तो नहीं है लेकिन बाय चांस जाते भी हैं तो बाबा को याद करना है। चाहे जंगल में बैठूं, पहाड़ी पर बैठूं, घर में बैठूं या कुटिया में बैठो, कहां भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो, तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, हम कांटों से फूल बन रहे हैं, बाबा बागवान भी हैं और क्या है बोलो, बाबा बागवान भी और क्या है माली भी है, माली आप नहीं हो क्या? बाबा कहते मेरे बच्चे भी माली, लेकिन बड़ा माली वो और साथी माली कौन है आप हैं। बाबा बागवान भी हैं माली भी हैं, हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो जाते हैं। कहाँ भी बैठो, चाहे कहाँ भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बन जाते हो। बुद्धि में एम एन ऑब्जेक्ट है कि हम ये बन रहे। साकार में बाबा बैठे होते थे, मुरली चलती थी हिस्ट्री हॉल में, तो वहां पर लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र होता था, तो बाबा इशारा करते थे कि तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ये बन रहे, ये मीन्स लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, सिर्फ बुद्धि में बाप को याद करो। रोटी पकाओ, खाना बनाओ और खाना खिलाओ, तो खाना खाओ तो क्या करना है, क्या करना है, बनाते समय तो याद कर ले, खाने टाइम क्या करना है बोलो माताएं, बाबा को याद करना है ना, है कि नहीं? तो बाबा कहते कुछ भी करो बाप को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ करते सिर्फ बाप की याद में रहो, बाप की याद से वर्षा भी याद आता है, 84 का चक्र भी याद आता है, इसमें और क्या तकलीफ है कोई? बाबा को याद करना है, चक्र को घुमाना है, बाबा कहते क्या इसमें तकलीफ है? कुछ भी नहीं, जबकि हम देवता बनते हैं तो कोई भी आसरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध करना, किसको दुख देना, किसी को दुख नहीं देना, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी। बाबा हमेशा कहते थे, दादी भी कहती थी, कोई फालतू बात सुना है पहले तो सुनो नहीं, कोई सुना भी देता है एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दो, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो। बाकी संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत है, आधा कलप से तुम सुनते सुनते नीचे गिरे हो, अब बाप कहते हैं अब ये झरमुई झगमुई बंद करो, ना करो, फलाना ऐसा है इसमें ये है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है, जैसे ये तो जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना, फलाना ये है ये करता है इसने ऐसा किया, बाबा कहते हैं ये तो ऐसा हो जाता है जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये तो जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल, बाबा ने पहले भी बताया है, संगम का समय तुम ब्राह्मणों के लिए कितना वैल्यूएबल है, पढ़ाई से ही अपना कल्याण करेंगे, इससे ही ऊंच पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इम्तिहान पास करने के लिए विलायत में जाते हैं पढ़ने के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट के स्टडी के लिए कहाँ कहाँ जाते रहते हैं ना, उस पढ़ाई में पास करने के लिए विलायत में जाते हैं। बाप तो तुमको यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, बाप आत्माओं को कहते हैं मुझ बाप को याद करो, एक दो को सामने बिठाते हो तो भी बाप की याद में रहो। बाबा ने योग के टाइम शुरू में पहले तो जो संदली पर बहन बैठती थी वो सबको योग कराती थी, फिर बाबा ने बच्चों के अंदर और भी ऐसे प्यार की भावना भरने के लिए बाबा कहते थे एक दो के सामने बैठ के याद योग करो। अब एक कई तो पक्के हैं वो तो बाबा की याद दिलाते, फिर कई कच्चे हैं तो याद भी करते रहेंगे लेकिन वो पुरानी बातों को भी रिपीट करते हैं। तो बाबा कहते एक दो के सामने बैठते हो तो क्या करो, बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं तुमको तो कोई तकलीफ नहीं देते, बाप तो आत्माओं को कहते हैं मुझ बाप को याद करो, एक दो को सामने बिठाते हो तो भी बाप की याद में रहो, याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है, कुछ नहीं करना, बाबा को याद करना है, कांटों से फूल बन जाएंगे, कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर तो चलना चाहिए ना, हरेक की अलग अलग बीमारी होती है तो हरेक बीमारी के लिए सर्जन है, बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं। तुम्हारा सर्जन कौन बना है, कौन है सर्जन, बोलो है, जोर से बोलो है भाई, बोलो शिव बाबा है ना। तो बाबा कहते तुम्हारा सर्जन कौन बना है, भगवान, वह है अविनाशी सर्जन। लौकिक सर्जन क्या आज है कल नहीं होगा, लेकिन ये है अविनाशी सर्जन। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। दूसरा सर्जन भी कहेगा ये दवा खाओ ठीक हो जाएगी, बाबा कहते केवल मुझे याद करो, आधा कल्प के लिए निरोगी बनते हो, सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। ये गांठ बांध देनी चाहिए। अब ये गांठ कहाँ बांधेंगे, कहाँ बांधेंगे, साड़ी के पल्ले, कपड़े को, रुमाल को, किसमें बांधेंगे है, गांठ कहाँ बांधेंगे, भट्टी वाले बोलो गांठ बांधी कि नहीं, कहाँ बांधेंगे बोलो, बुद्धि में बांधेंगे, थोड़ी दूसरी गांठ बांधनी है, गांठ जो है बुद्धि में मिस पक्का करना है। तो बाबा कहते ये गांठ बांध देनी चाहिए, याद से ही तुम निरोगी बन जाते हैं, फिर 21 जन्म कोई भी रोग नहीं होगा। भल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना, कुछ भी तकलीफ होती है तो शरीर को भल होगी लेकिन अनुभव तो आत्मा ही करती है ना, लेकिन भोगती तो आत्मा है ना, वहाँ आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे, सिर्फ याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है, प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते। परदेव बाबा के टाइम प्रदर्शनी शुरू हुई थी, जगह जगह प्रदर्शनी लगाते थे और उस समय तो कोई ऐसे साधन भी नहीं थे, जोर जोर से बोलते थे, सुबह से लेकर रात तक पार्टी आती थी, बहस करने वाले भी होते थे, बोलते बोलते कभी कभी गला भी बंद हो जाता था, लेकिन जिनको सर्विस का शौक है वो कुछ न कुछ पानी लेकर के ठीक कर लेते थे, जिनको नहीं था तो कहेंगे गला घुट गया है। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं, कई बच्चे फिर समझते हैं कि हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। कईयों को इतना शौक होता था कुछ भी हो जाए तो कुछ हो जाए ना तो जाना तो बाबा के पास है ना, ये भी बहुत अच्छा है सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी माँ बताते हैं, प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। माँ हमेशा कहते थे कि लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ, उनको बताओ कि हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, फिर हमको बनाने वाला कौन है, फिर शिव बाबा का चित्र के पास ले जाओ। फिर बाबा कई बार ऐसे पक्का कर, जब तक बाप को नहीं पहचाना तब तक उसको आगे ले ही नहीं जाना, वहां पर खड़े खड़े समझाओ। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये A1 चित्र है। क्यों बाबा कहते हैं A1 परफेक्ट है और हमको ऐसा बनना है इसलिए A1 चित्र। भारत में आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था, अथा धन था, पवित्रता सुख शांति सब था, परंतु भक्ति मार्ग में सत्यों को लाखों वर्ष दे दिया है तो कोई भी बात याद कैसे आए। कुछ याद करते सत्युग था कब था तो पूरा समझ नहीं आता ना। ये लक्ष्मी नारायण का फर्स्ट क्लास चित्र है। सत्युग में 1250 वर्ष इस डायनेस्टी ने राज्य किया था, आगे तुम भी तो नहीं जानते थे। पावन कहते भक्ति वाले नहीं जानते तो तुम भी तो नहीं जानते थे ना। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, कौन सी स्मृति है बताओ, कौन सी स्मृति, कि तुम बच्चों ने ही सारे विश्व पर राज्य किया, याद है, फिर करना है वो भी पक्का। अभी बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, तुमने ही तो सारे विश्व पर राज्य किया था, तुम क्यों भूल गए हो, क्या भूल गए हो। बाबा कहते ये याद नहीं आता, तुम क्या भूल गए हो, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, तुम ही सूर्यवंशी थे, सारे विश्व पर राज्य किया था, तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, तुम ही सूर्यवंशी थे। 84 जन्म लेने वाले हाथ खड़ा करो, सब लेंगे ना, अगर नहीं लेने हैं तो ठीक है, द्वापर में त्रेता में भी आ सकते हैं, है? तो बाबा कहते सबको, यहाँ जो बैठे सब 84 जन्म वाले है ना। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म भी तुमने लिए, तुम ही सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म तो लेते हो, 84 जन्म तुमने कैसे लिए हैं, ये भी बड़ी सिंपल बात है समझाने की। नीचे उतरते आए हैं, अब फिर बाप ऊंचा चढ़ाते, गिरते आए गिरते आए, बाबा क्या करते एक सेकंड ऊपर ले जाते हैं, अब बाप फिर उड़ती चढ़ती कला में ले जाते हैं, गाते भी है ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, होती है ब्राह्मणों की चढ़ती कला, उससे सारे विश्व का कल्याण हो जाता है, गाते भी है ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। फिर शंख आदि बजाते हैं, अब तुम बच्चे जानते हो हाहाकार होगा, पाकिस्तान में देखो क्या हुआ था, जब पार्टीशन हुआ उस समय का सीन तो पुराने बताते, क्या हाल था कैसे था, लोग सब डर गए थे, विनाश हो गया है, वो भी ऐसी दर्दनाक सीन था। तो बाबा कहते हैं पाकिस्तान में देखो क्या हो गया था, लेकिन देखो बाबा के बच्चों की कितनी सेफ्टी थी, अंश मात्र भी उनको ये पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा, अंश मात्र भी एक छोटी सी चीज के लिए भी उनको कोई कमी महसूस नहीं हुई, और ही लोग भर भर के दे जाते थे, बोला कि हम देश छोड़ रहे हैं, हमारा ये सारा सामान आप ले लो, हमारा ये ले लो, तो बाबा के बनने से कितने फायदे, कोई उधर लोग रो रहे हैं और इधर बाबा क्या कराते, बच्चों को खुशी का अनुभव कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हाहाकार होगा, पाकिस्तान में देखो क्या हुआ, सबके मुख से यही निकलता था, हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा, अब ये विनाश तो बहुत बड़ा है। पीछे फिर जय जयकार हो रही, उस समय जो छोटा सा सीन था, अब बाबा के आगे चल के क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगी, तुम बच्चों की जय जयकार होगी, फिर जय जयकार होनी है। बाप बच्चों को समझाते हैं इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। हद की बातें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो, स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना पढ़ा, लेकिन बेहद की तो नहीं सुने ना पढ़े। तो बाबा कहते हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सुनते आए हो। ये किसको भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे किया, इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, इतने जन्म राज्य किया, फिर ये धर्म होते हैं, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, किस स्टार्टिंग में क्या था, किसने राज्य किया, उसके बाद और धर्म कैसे आते। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल अल फादर ऑल फादर, जो हमारा पिता है, स्पिरिचुअल फादर बच्चों को बैठ देते। स्पिरिचुअल नॉलेज कौन देता है, स्पिरिचुअल फादर। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर बच्चों को देते हैं। वहाँ तो मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे। कितनी बड़ी बात, केवल पढ़ाते नहीं हैं, बाबा हमको आप समान बना रहे हैं, यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं। टीचर जरूर आप समान बनाएंगे ना, टीचर पढ़ाता है तो सोचता सब बच्चे अच्छे बन जाएं, इंटेलिजेंट बने, टीचर जरूर आप समान बनाएंगे ना। बाप कहती हैं मैं तुमको भी अपने से ऊंच डबल सिरताज बना दू। बाबा हमेशा कहते देखो तुम बच्चे कितने भाग्यशाली, तुम तो डबल सिरताज बनते हो, मैं तो डबल सिरताज ही नहीं बनता हूँ। बाबा को ताज ही कहा है, शिवलिंग बना देते हैं, कभी कभी कोई ताज पहना देते हैं, लेकिन है तो नहीं ना बाबा को ताज। बाबा कहती हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिरताज बनाता हूँ, लाइट का ताज भी मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होता है, सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है, कितना छी छी बन जाते हैं। बाबा को बोला जब बाबा के छी छी, बाबा को लगता है क्या बन गए हैं, तो बाबा के देखो छी छी हो गए, तो बाबा कहते हैं कितना छी छी बन जाते हैं। फिर बाप आकर के भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। दुनिया में भगत तो सब हैं, सच्चों में कोई भगत होता ही नहीं। अच्छा सच्चों में कोई भगत होता है कि नहीं, नहीं होंगे क्या पक्का? अच्छा संगम युग के अंदर भगत कौन है बताओ, कौन है? बाबा के पास ना कई बच्चे आते थे, बाबा के पास आकर के बाबा को कहते थे बाबा मेरे सिर पे हाथ रख दो, बाबा कहते देखो भगत आ गया। फिर कई बच्चे आते थे बाबा के सामने जैसे झुकते थे, बाबा कहते बच्चे हो बच्चे अधिकारी हो, तो कभी बाबा के सामने कहेंगे बाबा हमारा ये काम कर दो, तो बाबा कहते बस भगत तो है ना, संस्कार है, भक्ति का संस्कार है, मांगने का भक्ति का संस्कार है, बाबा ये काम कर दो। बाबा ने आपको जिम्मेवारी दी है काम करने की, तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सदा खुशी में रहो, बाबा साथ हैं, अपने भाग्य के गुण गाओ तो कार्य हुआ पड़ा है। तो बाबा कहते हैं अब फिर बाप आकर भक्तों को फल देते हैं। दुनिया में भगत तो सब हैं, सचिव में कोई भी भगत होता नहीं। भक्ति कलट यहाँ है, वहाँ तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। अभी तुम जानते हो हम बाप से बेहद की प्रारब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब कुछ थी और कोई भी धर्म नहीं था। इस समय तो अनेक धर्म हैं, वह पहले धर्म नहीं फिर धर्म को आना है। पहले एक ही आएगा फिर धीरे धीरे धर्म आते हैं। अब बाप कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई की तो बात ही नहीं है। बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अब कहाँ बैठे हैं पराया राज्य में, जीवन कैसे बन गया, जैसे कि बेगर जैसा ना। तो बाबा कहते बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना तो सब कुछ गुप्त है। बाबा भी तो गुप्त आया हुआ है, लोगों को पता थोड़ी पड़ता है कैसे बाबा अपना कार्य कर रहे हैं। बाबा भी तो गुप्त आया हुआ है, आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। वह अभी देह अभिमान में आ गई है। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। बाप और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते, है कोई तकलीफ खाओ पियो घूमो फिरो कुछ भी करो, बाबा कभी नहीं मना करते थे। लेकिन बाबा कहते थे केवल एक अभ्यास करना है देही अभिमानी बनने का। तो बाप तो कुछ भी तकलीफ नहीं देते हैं। बाप जब गुप्त रूप में आते हैं, तुम बच्चों को गुप्त दान में क्या देते हैं, विश्व की बादशाही देते, पता भी नहीं पड़ेगा। ऐसे साधारण लोग यहाँ बैठे हैं, ये जाकर के विश्व के मालिक बनेंगे, विश्व के बादशाही लेंगे, बाबा गुप्त रीति से दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप जब गुप्त रूप में आती हैं, तो तुम बच्चों को गुप्त दान में विश्व की बादशाही देते हैं। तुम्हारा सब गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त, ज्ञान तो फिर भी सुनाते हैं, योग भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त है, पुरुषार्थ भी गुप्त है, योग की रेस भी गुप्त है, सब कुछ गुप्त है। इसलिए रसम के रूप में कन्या को जब दही देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। शुरू में ऐसा होता था, बहुत टाइम समय पहले जब कन्या की शादी होती थी, कुछ लोग तो ऐसे होते थे दहेज गुप्त रूप में देते थे, कुछ ऐसे होते थे जो दिखा दिखा करके देते थे, कुछ ऐसे होते जो वर्ण कर करके देते थे, और आजकल तो वो जमाना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए रसम के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही देते हैं। वास्तव में कहा जाता है गुप्त दान महापुण्य। बाबा भी शुरू में भक्ति में भी करते थे ना, तो भक्ति में भी बाबा ऐसे कहते थे, और कहा भी जाता है कि दान एक हाथ से करो, दूसरे को मालूम ही नहीं पड़े कि क्या किया है। गुप्त दान का ही महत्व है। और यहाँ पर भी सब करते तो हैं, लेकिन कभी कभी कईयों की आदत होती है, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना दिया, जितना गया पानी में गया। तो इसलिए कभी भी जो करते हैं अपना भाग्य बनाने के लिए करते हैं, गुप्त करना है अपने भाग्य के लिए करना है, किसी को सुना करके किसी को कह करके नहीं। क्योंकि ये हो जाता ना, मैंने इतना किया कल भी बाबा ने मुरली में कितनी अच्छी बात कही थी, कई बच्चों को फीलिंग आ जाती है हमको ये स्थान ठीक नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, तो बाबा कहते ये भी ऐसा है। गुप्त दान बता बता के करते ना, तो उससे क्या होता है कि कुछ भी उसका फल नहीं होता है। तो बाबा कभी कहते ना मुरली में, गरीब एक पैसा करता है अमीर का 1,000 बराबर हो जाता है। इसी जब करते भी है चक्कना दाना करते हैं, उस समय भी ये ध्यान रहे कि हम अपना भाग्य बनाने के लिए कर रहे हैं, अपनी राजाई पद पाने के लिए अपने लिए कर रहे हैं। बाबा कहते मैं लेकर के क्या करूंगा। और कभी कभी एक हंसी की बात है, बाबा के पास कई बच्चे आते थे, बाबा मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन है, बाबा जब आपको जरूरत पड़े ना आप मेरे को याद करना। तो बाबा कहते थे अच्छा, ना जरूरत है ना याद करे, देने वाला पूछता है क्या, मेरे पास बहुत है, जब जरूरत आ रही तुम देगा तब तो सफल होगा ना। इसलिए इस बात का भी सबको ध्यान रखना होता है कि जो करना है समय का कोई भी बाबा कहते भरोसा थोड़ी है। तो बाबा बता रहे हैं वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य, दो चार को भी मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। माँ कहती है बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ, तुम चाहती हो ना कि विश्व में शांति हो। क्या समझाना है कि विश्व में शांति हो कब होगी, इनके राज्य में थी परंतु कब थी, ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानती हो सचिव में पवित्रता सुख शांति सब थी, याद भी करती हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ परंतु समझते कुछ भी नहीं, जिसको जो आया वह कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं है, ये है ड्रामा। मीठी मीठी बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हमने 84 का चक्कर लगाया है, अभी बाप आए हैं पति दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए, बाप की याद में रहते रहते क्या होगा, तुम ट्रांसफर होते जाते। जितना बाबा की याद में रहेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, बाप की याद में रहते रहते तुम ट्रांसफर होते जाते हो, कांटों से फूल बनते हो, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बनाने वाला तो बाप है ना, बनेंगे हम, लेकिन बनाता कौन है, बनाने वाला तो बाप है ना। वह परम आत्मा तो सदैव प्योर है, वही आते हैं प्योर बनाने के लिए। सचिव में तुम बहुत खूबसूरत बन जाएंगे, वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, हर एक इतना खूबसूरत होता है उसको यहाँ कोई कॉपी कर ही नहीं सकता है, वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं ना, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। आगे फीमेल्स बहुत पर्दे में रहती थी, कोई की नजर ना पड़े, बहुत सिस्टमेटिकली होता था, और ही अभी तो और ही खुला कर दिया है, तो यहाँ तो जहाँ तहाँ गंध बढ़ गया है। बाप कहती है हियर नो इविल सी नो इविल, राजा में पावर रहती है, ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें भी पावर रहती है। अब भगवान के लिए दान करेंगे है भगवान के नाम से, लेकिन भगवान के लिए नहीं अपने लिए करते हैं। तो बाबा कहते हैं ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है, यहाँ तो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया वह करते रहते हैं। मनुष्य बहुत गंदे हैं, क्या हालत हो गई है ना। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्यों सौभाग्यशाली हो बताओ, खेवैया बाप ने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो क्योंकि खेवैया बाप ने हाथ पकड़ा है। तुम ही कलप कलप निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले है देही अभिमान और उसके बाद सब भूत आते। पहले आएगा देह अभिमान, ये क्यों ऐसा क्या, फिर धीरे धीरे सब भूत साथ में आ जाते हैं। मेहनत करनी है, अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। ये कोई कड़वी दवा नहीं है। अब वैद्य के पास जाते हैं वो कड़वी दवा देता है, ऐसी कड़वी दवा देता है। कोई कोई दवा बहुत कड़वी होती है और वो कहते हैं कि दवा कड़वी है लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा है। लेकिन बाबा की जो दवा है कड़वी है मीठी है? कौन सी दवा है? मीठी है। मीठी है तो हाथ खड़ा करो ना। अच्छा, और जिनको कड़वी लगती है वो भी हाथ खड़ा करे। लगती है कड़वी? बाबा कहते याद करो याद करो। याद तो कर नहीं सकते, क्या करे, काम करे, घर को संभाले, परिवार संभाले, बिजनेस करे, बाबा को कैसे याद करे। तो वो उनको लगती है कड़वी, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं ये कोई कड़वी दवा नहीं है, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। फिर कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ कभी टांगे थकेंगे। सबको पता है ना बाबा ने कैसे शुरू में जब यहाँ पर आए तो कुछ साधन तो थे नहीं, नीचे से ऊपर सब पैदल करते आए। फिर बाबा कभी पहाड़ी पर ले जाते थे, कभी कहाँ ले जाते थे, पैदल कराते ही रहते थे। बाबा की याद में बाबा साथ है, कौन थकेगा? बाबा साथ हो तो कौन थकेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा की याद में पैदल करते जाओ कभी टांगे थकेंगे नहीं, हल्के हो जाएंगे, बहुत मदद मिलती है। तुम मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हो। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा के पास आए हैं, बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बच्चों को कहते हैं हियर नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रत्न ही निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बातें निकल नहीं सकती। तुम्हें वाहियात झरमुई झगमुई की बातें कभी सुननी नहीं है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी, ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी है पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रत्न देते हैं। या पत्थर मारेंगे या क्या करेंगे, या ज्ञान रत्न दान करेंगे या पत्थर मारेंगे या अविनाशी ज्ञान रत्न देंगे। जिसको जिसकी कोई वैल्यू कथन कर ही नहीं सकते। ज्ञान रतन, एक एक रतन की वैल्यू इतनी ज्यादा है जिससे विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो बाबा कितनी जिसकी वैल्यू कथन कर नहीं सकते। बाप आकर के तुमको ज्ञान रतन देते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा कैसा है? बोलो बाबा कैसा है? कैसा है बाबा? बाबा बहुत बहुत मीठा है। हमें दादी जान की हंसाती थी, कहती बाबा बाबा तो बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, दिल करता है खा लो, खाना मीन्स दिल में समा लो है। तो दादी ऐसे एक्टिंग करती थी, हंसाती थी। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत बहुत मीठा है। बोलो। और बच्चे मीठे या कभी कभी कड़वे भी हो जाते हैं ना, कभी कभी हो जाते हैं ना, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कलप गाते आए हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते। तोते को जो सिखा दो ना वो बोलता रहेगा, और तोते बैठे रहेगा। तोता एक बार नल पे बैठा है और उसको बोला कि तोता राम नल पे नहीं बैठना, तोताराम नल पे बैठा, बोलता तोताराम नल पे नहीं बैठना, बैठा हुआ भी और कहता नहीं बैठना। तो बाबा कहते तोते मिसल जाते रहते हैं, तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व के बादशाह देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है फिर बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ब्राह्मण कुल भी तो चाहिए ना। भागीरथ कहने से भी समझ ना सके, इसलिए ब्रह्मा और उनका ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ भी कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा के तन को भागीरथ कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा ने प्रवेश किया है ना, तो ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनको भागीरथ भी कहा जाता है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण है चोटी, विराट रूप भी ऐसा होता है। विराट रूप देखा ना सबने, जिसने ना देखा विराट रूप हाथ खड़ा करो, सबने देखा। अच्छा, जिसने ना देखा तो म्यूजियम के अंदर वहां पर बाबा ने खास विराट रूप का चित्र बनाया था, वहां जाते हैं तो वहां जाकर देख सकते हैं। विराट रूपी ऐसा है ऊपर में बाबा, फिर संगम योगी ब्राह्मण जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर दैवी संतान बनेंगे, तो डिग्री कम हो जाती। देवता बने तो डिग्री कम, ब्राह्मण बने तो डिग्री उससे भी ऊंचे। लेकिन ब्राह्मणों की डिग्री क्या करती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, घूमती रहती है, डिग्री स्टेबल नहीं रहती है, इसलिए देवताओं को डिग्री देते हैं। फिर तुम दैवी संतान बनेंगे तो डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण की भी डिग्री कम है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं, यहाँ वाला ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो ज्ञान से प्रारब्ध पाते ना, ज्ञान ब्राह्मणों में है, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी नहीं कहेंगे, है तो संपन्न। तो बाबा कहते हैं इन्होंने ज्ञान से पद पाया है, तुम ब्राह्मण कितने ऊंच हो, फिर देवता बनते हो तो कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो दैवी वंश में भी परंपरा से चला आता। मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों को सब राज सब युक्तियां समझाते। बाबा कहते देखो कितने भाग्यशाली, मीठे मीठे बच्चों को सारे राज, कुछ भी नहीं बाबा छिपाते, सब राज और युक्तियां समझाते रहते हैं। ट्रेन में बैठे भी तुम सर्विस कर सकते हो, एक चित्र पर भी आपस में बैठ बात करेंगे। शुरू शुरू में बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई थी, ट्रेन में बैठो, चित्र लेके बैठ जाओ, आपस में डिस्कस करो, बाकी पैसेंजर जो बैठे होंगे ना वो सुनेंगे, और जिनको इंटरेस्ट होता था धीरे धीरे आकर के पास में बैठते, सुनते सुनते उनके कान में भी चला जाता था। कई तो बाबा के पक्के बच्चे निकल आते थे, कईयों के पास थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी चला जाता था। तो बाबा कहते हैं एक चित्र पर आपस में बैठ बातें करेंगे तो ढेर आकर के इकट्ठे होंगे। जो इस कुल का होगा वह अच्छी रीति धारण कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अब तो कुछ भी नहीं है, कहाँ इतने ऊंच का अब क्या हाल हो गया। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है, बीच में है संगम युग जिससे तुम पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सा। पहला है ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई भी बात मुख से नहीं निकालनी है। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई भी बात मुख से नहीं निकालनी है। झर मुई झग मुई की बातें कभी नहीं सुनना है। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। दूसरा, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहे स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने, इसी नशे में व खुशी में रहना है। आज का वरदान, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पांस देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पांस देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं, क्या ये फॉलो फादर है? अगर नहीं तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते, पहले जमाने में ऐसा होता, अभी तो फोटोस्टेट मशीन है, पहले क्या करते थे, कार्बन पेपर डालते थे और जैसे ऊपर जो लिखते जाते हैं दूसरे पेज पे वैसा ही आ जाता है। तो बाबा कहते हैं, कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हो वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल करके टू लेट हो जाएगा। स्लोगन, संतुष्टता का फल है प्रसन्नता। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आज का व्यक्ति इशारा, अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो। ये स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्मा है। सबके प्रति आत्मिक दृष्टि हो। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है, आत्मा के संस्कार हैं। ये पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। आज के हम सुनेंगे प्यारी मातेश्वरी जी की विशेषता। आज है 27 तारीख, मधुर बोल और धीमी आवाज के गुण द्वारा साइलेंस की शक्ति से संपन्न। मधुर बोल और धीमी आवाज के गुण द्वारा साइलेंस की शक्ति से संपन्न। मम्मा के बोल में बहुत मिठास थी। मम्मा बहुत धीमी आवाज से बोलती थी और जितनी जरूरत होती थी उतना ही बोलती थी, लंबा चौड़ा नहीं, जितनी जरूरत होती थी उतना ही बोलती थी। मम्मा कभी भी आवाज से हंसती भी नहीं थी। मम्मा की मधुर मुस्कान ही मम्मा का हंसना था। उनकी वाणी में सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई और गंगा का प्रवाह दिखाई दे। सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई और गंगा का प्रवाह दिखता था, जिससे सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। हम भी बहुत कम शब्दों का प्रयोग करें, बोल के महत्व को समझकर आवश्यकता अनुसार ही बोले अच्छा ओम शांति। आज हम देख रहे हैं हमारे बीच में बाबा की लाडली गीता बहन बहुत समय के बाद पांडव भवन के ओम शांति भवन में आई हैं। करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं। पांडव भवन में बीच बीच में आते हैं, बच्चों की क्लासेस कराते हैं और हमारे बीच में आज बैठी हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं, गीता बहन आप खड़ी हो जाओ। ये वैसे तो इन्होंने देखा भट्टी वाले कल मिले हैं, तो ताली बजाओ गीता बहन के लिए। और दूसरी बात हम आपको बताएं कि आपको पता है भट्टी का जो ग्रुप है ये कलकत्ता श्याम नगर का है और श्याम नगर सेंटर और उसके आसपास के सेंटरों को संभालने वाली हमारी कमला बहन। कमला बहन हाथ खड़ा करो, मधुबन वाले आपको देखे। आपने निर्मल शांता दीदी संतरी दादी के साथ रह करके बहुत पालना ली है। इनके पास तो दादियों के दीदी के गहरे अनुभव है, तो हम चाहेंगे भाई को बताएंगे आज रात की क्लास में आप भी अपने गहरे अनुभव सुनाएं। और सुन करके सब बहुत खुश हो रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें। दीदियां क्या करती रही हैं, कितना त्याग तपस्या उन्होंने किया है, आज हम सब मिलकर के उनके त्याग और तपस्या का फल खा रहे हैं। सब कुछ किया उन्होंने और हम सब क्या हैं, फल खा रहे हैं। तो इसलिए हम अपनी दीदियां दादियां सबको बहुत जोरदार करतल ध्वनि से अपने मन की भावनाएं प्रकट करते हैं। आज भी बाबा दादियां दीदियां सब हमारे साथ हैं, वही कार्य कर रहे हैं और कराने वाले वही हैं, केवल किसी न किसी को निमित्त बना के कराते हैं। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद भट्टी के सभी भाई बहने, भट्टी के वह भाई बहने जिनको खाना खिलाने की ड्यूटी है वो भी यहाँ रुकेंगे, जाएंगे नहीं। पहले सौगात लेंगे फिर उसके बाद नीचे जाएंगे। अच्छा ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।